समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रेशमा। रेशमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुदिता, एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन FM गोल्ड एट 100.1 megahertz. I'm Reshma Tiwari and with me today is my co-host Mudita, and for you we have a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. Let's begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi addresses rally at Akola in Maharashtra. Says in the third term of his government, development projects worth crores of rupees have already been launched, which include many infrastructure projects in Maharashtra.
उत्तराखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य का रजत जयंती वर्ष शुरू होने पर प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ने नागरिकों को शुभकामनाएं दी।
ईस्ट सेंट्रल रेलवे टू ऑपरेट 446 स्पेशल ट्रेन्स इन नेक्स्ट 15 डेज टू मैनेज द रिटर्न रश ऑफ छठ पूजा पैसेंजर्स।
पाकिस्तान में बलूचिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट में 24 लोगों की मौत और 40 से अधिक घायल।
एंड इन इंडियन हॉकी, द हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत सिंह क्लिंचेस प्लेयर ऑफ द ईयर एंड पीआर सृजेश गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड एट FIH 2024 इन ओमान। And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we'll talk about National Legal Services Day and Foundation Day of Uttarakhand. So, Mudita, the great thinker J.S. Mill has said, justice implies something which is not only right to do and wrong not to do, but which some individual person can claim from us as his moral right. National Legal Services Day is being observed across the country today. The day is primarily celebrated to promote legal awareness and ensure access to justice for all citizens, especially those from marginalized communities.
भारत में हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, जो लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और अधिक न्यायसंगत समाज बनाने के लिए समर्पित है। और रेशमा, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अक्सर लोगों को कानून का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, अपने अधिकारों के बारे में भी उनको नहीं पता होता है, तो ये इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और ये दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि 1995 में इसी दिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना था।
एब्सोल्युटली, ऑन नवंबर 9, 1995, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट वाज क्रिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग लीगल एड टू अंडर प्रिविलेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल। एज अ रिजल्ट ऑफ द हिस्टोरिक लॉ, द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन December 5, the same year. Since then, National Legal Services Day is observed every year.
ये दिन मुफ्त कानूनी सहायता और विवादों के समाधान की वैकल्पिक विधियों की उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है। इस दिन का उद्देश्य उन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जो वकील रखने में सक्षम नहीं है, साथ ही मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटारे को सुगम बनाना और नागरिकों में कानूनी जागरूकता फैलाना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है।
The day emphasizes empowering marginalized communities, highlighting the importance of equal access to justice, and advocating that no one should be deprived of legal representation due to economic disadvantages. Those eligible for free legal aid include members of scheduled castes or scheduled tribes, victims of trafficking, women, children, persons with disabilities, individuals in underserved circumstances, industrial workers, those in custody, and those with an annual income below prescribed threshold.
और रेशमा, जैसा हम जानते हैं कि कानूनी सहायता सभी व्यक्तियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का एक बुनियादी पहलू है, और खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण और इस तरह की आबादी वाले देश में इसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारत में कानूनी सहायता संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत एक मौलिक अधिकार है। इस प्रावधान के अनुसार राज्य को यह सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया है कि कानूनी प्रणाली समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे।
Legal aid refers to the provision of free and subsidized legal assistance to individuals who are unable to afford legal representation or access the justice system on their own. It encompasses a range of services aimed at ensuring that all individuals, regardless of their socioeconomic status, have equal access to justice and legal remedies. Socrates believed that if everyone were to be just unjust, if everyone manipulated rules to suit their own interests, no one could be sure of benefiting from injustice. Nobody would be secure, and this was likely to harm all of them. Hence, it is in our own long-term interest to obey the laws and be just.
और रेशमा, अब हम चलते हैं, आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है।
उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरा हिमाला।
तो जैसा श्रोताओं को भी पता ही है रेशमा, कि उत्तराखंड जो है भारत का एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी राज्य है, और आज ही के दिन उसकी स्थापना हुई थी, यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। उस समय इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, और फिर उसके बाद 2007 में आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।
Yes, उत्तराखंड is commonly referred to as the land of gods, देवभूमि, due to several Hindu pilgrimage sites in the state. In addition to being a reminder of the state's journey to statehood, the day also marks a tribute to its heritage, resilience and the people's pride in their cultural identity.
बिल्कुल, वहाँ के लोगों को अपनी उस सांस्कृतिक पहचान पे बड़ा गर्व तो है ही। इस राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं, पश्चिम में हिमाचल और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। और जैसा कि रेशमा ने भी बताया अभी, कि इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई प्राचीन धार्मिक स्थल जैसे चार धाम यानी यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ, और इसके अलावा सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदी गंगा का उद्गम स्थल भी है ये राज्य।
यस मुदिता, एंड फॉर पीपल इन दिल्ली स्पेशली, इट इज easily accessible and it's one of the favorite
destination ke na chahiye ek tarah se.
So we are sure our listeners must have visited this beautiful state. Every 12 years the Mahakumbh Mela is conducted in the Uttarakhand district of Haridwar. Rishikesh, known as the yoga capital of the world, lies in Uttarakhand.
जी बिल्कुल, और इसके अलावा जो हम बात जब करते हैं वहाँ पे पर्यटन की, तो हम ज्यादातर चार धाम में या पहाड़ियों उस पर ले जाते हैं। इसके अलावा वहाँ जिमकॉविट भी है, जिसमें जहाँ टूरिस्ट जाना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ में मुनस्यारी और धारचूला जैसी खूबसूरत जगह हैं। साथ ही अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो वहाँ के खान पान का मज़ा ज़रूर लें, क्योंकि आपको एक बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही हेल्दी जो है खाना, जिसको न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसकी बहुत है, वैसा खाना आपको वहाँ पे खाने को मिलेगा। चाहे मडुए की रोटी हो, झंगोरे की खीर हो, ऐसा बहुत कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा। तो जब भी जाएं वहाँ के खाने का मजा जरूर लें आप।
यस, देयर इज एन इम्पोर्टेंट सिख श्राइन एंड पिलग्रिमेज साइट व्हिच इज हेमकुंड साहिब।
जी,
सिचुएटेड इन नॉर्थ सेंट्रल उत्तराखंड, द श्राइन honors the 10th guru of Sikh religion, Gobind Singh. It marks the place where the guru spent years in meditation. Among the favorite destinations of residents and visitors are the Valley of Flowers and Nanda Devi National Parks, together designated as UNESCO World Heritage Site in 1988 in the northern Kumaon Himalayas, Rajaji National Park in the western Shivaliks, and Corbett National Park in the Himalayan foothills. Masuri, Nainital, Ranikhet, Kwasani, Almora and Oli are popular mountain resorts, some of which offer fine slopes for skiing.
जी बिल्कुल रेशमा, लेकिन साथ ही एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप वहाँ पर पर्यटन के लिए जा रहे हैं तो आप एक जिम्मेदार पर्यटक के तौर पर जाएं, क्योंकि अक्सर लोग वहाँ जाते हैं पहाड़ों पे और गंदगी छोड़ करके चले आते हैं. आप जो भी लेकर के जा रहे हैं उसका सही तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना आपकी जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है टूरिस्ट को ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए.
एब्सोल्युटली, दैट्स अ मस्ट.
इतना खूबसूरत राज्य है तो उसको खूबसूरत बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है.
Prime Minister Narendra Modi has lauded Uttarakhand for its outstanding strides in development, noting that the state is leading in various domains. Addressing the nation virtually on the occasion of the 25th Foundation Day of Uttarakhand today, the Prime Minister said that this day marks the beginning of the Silver Jubilee celebration of the state. The Prime Minister affirmed that the central government is leaving no stone unturned in ensuring the development of the state. Underlining that Uttarakhand is setting new trends and standards, Mr. Modi pointed out that the state topped the 2023-24 Sustainable Development Goals India Index. He added that the state has been put in the category of leaders in the Achievers and Startup Ranking of the Ease of Doing Business.
तो हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से भी उत्तराखंड के सभी वासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास. तो हम सबसे पहले चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर. छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित नारायणपुर जिले के लोक कलाकार बुटलूराम माथरा जनजातीय कला को बचाने के कार्य में जुटे हुए हैं. बुटलूराम को उनके इन प्रयासों के लिए छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य अलंकरण समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से विभूषित किया है. और ब्यौरा दे रहे हैं रायपुर से हमारे संवाददाता.
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के रहने वाले बुटलू राम माथरा पेशे से किसान हैं, साथ ही वे बांस से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां और वाद्य यंत्र बनाते हैं. बुटलू राम पिछले करीब चार दशकों से जनजातीय लोक कला को संरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में अबुझमाड़िया जनजाति की अनूठी लोक कला को बचाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए बुटलू राम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है.
छत्तीसगढ़ में नारायणपुर बुटलू राम माथरा जी अबुझ माड़िया जनजाति की लोक कला को संरक्षित करने में जुटे हुए. चार दशकों से वे अपने इस मिशन में लगे हुए हैं. उनकी ये कला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत जैसे अभियान से लोगों को जोड़ने में भी बहुत कारगर रही.
आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बुटलू राम माथरा ने बताया कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हर घर तिरंगा मेरा माटी मेरा देश जैसे अभियान को जन जन तक पहुंचाने में योगदान दिया है.
जैसे मेरी माटी मेरा देश इस प्रकार का जो योजना है उसमें भी हम लोग प्रदर्शन किए हैं, नृत्य प्रस्तुति किए हैं और एक हर घर तिरंगा और उसमें भी किए हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं उसमें भी हम लोग प्रदर्शन कर चुके हैं कई जगह.
नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में जनजाति संस्कृति अपने सबसे मूल रूप में विद्यमान है. बुटलू राम इस जनजाति लोक कला को ही बचाने के लिए पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने अपने इस कार्य में क्षेत्र के अनेक लोगों को जोड़कर उन्हें रोजगार भी प्रदान किया है. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला.
And moving on to Odisha, the mass nesting of olive ridley sea turtles, an annual phenomenon, began in Odisha's marine sanctuaries on the 1st of this month. This nesting season continues until May of next year. More from our Sambalpur correspondent.
Olive ridley sea turtles are reaching the coastal area of Odisha, Puri district for mass nesting. Because of the safety of these turtles, the state government bans the fishing process in the Bay of Bengal Sea from the Astarang coastal area to the Satapada area. Similarly, the state government declared Puri coast as a marine sanctuary. As per the forest department source, for the safest nesting process of olive ridley turtles, the Balukhand sanctuary adjoining the sea beach is divided into 13 parts, along with 12 hatcheries have been made for the keeping of eggs. These hatcheries are made in the range of Balukhand, Brahmagiri, Konark and Astarang forest sanctuaries. Besides that, the Marine Fisheries Department, Forest Department, Marine Police and Coast Guard teams protect the olive ridley turtles. Due to the restriction of the fishing process in Astarang coastal area to the Satapura area, in these times, fishermen facing heavy financial losses. To provide some relief, the state government gives 7,500 rupees as compensation to each fisherman. For Parikrama, this is Alok Chandra Bari, Akashvani, Sambalpur.
And it's time now for the Defence News Capsule from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defence. The report has been filed by Broadcasting Officer Anand Saurabh.
The year 2024 started with many firsts for the Nari Shakti in defence, one of which was inauguration of an all-girls Sainik school in Mathura by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. All the Sainik schools across the length and breadth of the country started admitting girls from the academic session 2021-2022. Admission of girl cadets was first started on pilot basis in Sainik school Chingchip during the academic year 18-19 as per the policy promulgated by Sainik School Society. And after the success of pilot project, all Sainik schools are now open for admission of girls up to 10% of vacancies in class 6 or 10 girls, whichever is higher. For the first year, which was 21-22, a total of 320 girl students were admitted to class 6 in 33 Sainik schools across the country. The number has now gone up more than 1,000 this year. We spoke to some of these bright, talented girl students of the Sainik schools.
When we started this journey in 2018 as part of the pilot project, we knew it wouldn't be easy, but little did we know just how transformative it would be. From the very first day, we were met with challenges. The expectations were high, the training was tough, and there were no exceptions made for us just because we were girls. In fact, that's what made it special. We were pushed to the same limits as our male counterparts, proving every day that we're not just equal, but capable of setting new standards. Initially, adjusting to the rigorous routine was tough. The physical drills, the discipline, the long days of academics, and the military training. Everything was a challenge. But it wasn't just about the physical endurance, it was about the mental resilience too. We have to prove not just to others but to ourselves that we belong here. Our journey from 6th grade to now hasn't been easy, but it has been worth every struggle. As we prepare to take a step into the future, we carry with us the pride of being pioneers, the first ever girl cadets who paved the way for many more to come.
The tough trainings we go through here have pushed my limit and taught me valuable life skills. I was introduced to many new experiences, one of the most memorable being parade. Learning how to march with precision and discipline was a completely new challenge for me, but it taught me the value of teamwork and dedication. Science School Chingchip have helped me grow in all aspects of my life, whether it be discipline, confidence, mental strength or physical fitness.
Currently, I'm studying in 7th standard to pursue my dream of joining the National Defense Academy and serving my nation during the Pride of Indian Air Force. I have decided to join the institution Sainik School Chittorgarh, where I could make myself physically and mentally fit. By encouraging a spirit of leadership and teamwork, we all care to make Sainik School Chittorgarh proud and foster a culture of excellence and resilience.
Jai to all, I'm Karat Gauripriya from Kerala and I'm currently studying in class 9 at Sainik School Nagrota. Now, you must be wondering what inspired me to join Sainik School Nagrota. My inspiration to join Sainik School Nagrota came from Air Vice Marshal Ilal Ahmed, who is a product of Sainik School Nagrota. I will fly a fighter jet someday in the near future, for sure. The moment I stepped into the school, surrounded by defense models and officers, I felt a deep sense of pride and motivation. Since becoming a cadet, life has changed in profound ways. The study schedule is intense, but it's designed to help us become more disciplined and focused. Sports and physical activities have also become an integral part of my daily life. The hostel environment encourages a sense of brotherhood, teaching us how to live and work together as a team. My long-term goal is to clear the SSB and join the Indian Air Force.
When I was 5 years, I first got to know about defense and got very much inspired by it. From then on, my ambition has been to join the military forces.
As these young talented girls would pass out from Sainik schools in the coming years, they will dedicate themselves for the cause of the nation. For Parikrama, this is Anand Saurabh from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense.
And Mudita, let's now take our listeners to a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On 9th of November 1947, Junagadh was annexed to the Indian Territory. Hey!
Narn.
Junagarh was a princely state in the Kathiawad region, where most of other princely states had already acceded to India. The ruler of Junagarh was Nawab Mahbat Khan Rasool Khanji.
In May 1947, Shah Nawaz Bhutto from Karachi became the Diwan of Junagarh. Under his influence, the Nawab decided to accede to Pakistan on 15th of August. Though, the Nawab had earlier given the impression that the future of Junagarh lay in joining India.
To satisfy the popular demand of the people of Junagarh, the then Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, made an offer to Pakistan to accept and abide by the verdict of the people of Junagarh in respect of the accession of the state to either of the dominions. People of the Junagarh were becoming agitated with the Nawab and the situation was becoming tense with each passing day.
After failing over a month to get a response from Pakistan to the offer, India put in place a series of measures that held the threat of military action against Junagarh. The Nawab of Junagarh fled to Karachi by air with his family and his pet dogs. On 8th of November, Bhutto asked the government of India to directly take over the administration of Junagarh through the regional commissioner at Rajkot.
India had indicated that it would want to formalize the arrangement through a plebiscite. This was held on February the 20th, 1948. Of around 2 lakh registered voters, only 91 cast their votes in favor of the accession to Pakistan. And thus, with the wish of the people, the princely state of Junagarh became a part of India.
Today is also the death anniversary of Pushpalata Das, a freedom fighter from Assam. At the age of just 6 years, she joined the Banar Sena to popularize the Khadi among the people and organized Chakra Sangh. Being inspired by her mother, she took pledge to free the motherland and never looked back ever since. At the age of 14, she was expelled from high school for protesting against the hanging of Bhagat Singh.
During 1940, her studies came to an end when she was jailed for individual satyagraha. From the year 1940 to 1942, Pushpalata Das was in Bombay as a member of the Women's Subcommittee of the National Planning Committee. During that period, she worked with Mridula Sarabhai and Vijaya Lakshmi Pandit for development and constructive works.
In the year 1942, Pushpalata Das married Omio Kumar Das, who was also a true Gandhian and a social worker.
After her marriage, Pushpalata organized the Shanti Bahini and Mrityu Bahini with her co-workers in Tezpur. Pushpalata was supposed to lead the procession to put the national tricolour flag on the compound of Gokhpur police station.
However, at that time fate intervened and Kanaklata Barua took charge over the procession from Pushpalata Das and fell to the British bullets. Post-independence, she served as a member of parliament. She also worked as an editor of a well-known Assamese magazine, Jayanti.
Pushpalata Das was offered the Tamrapatra by the Indian government for her services rendered during the freedom movement. But she refused to accept the Tamrapatra. The noble soul breathed her last on the 9th of November 2003 at the age of 88 years.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar. See you in the next episode tomorrow.
और अब खेल के मैदान की हलचल. श्रीलंका के दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा.
इंडियन मेंस हॉकी टीम कैप्टन हरमनप्रीत सिंह एंड फॉर्मर गोलकीपर पीआर सृजेश हैव वन द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर एंड गोलकीपर ऑफ द ईयर टाइटल्स फॉर द ईयर 2024. बोथ हरमनप्रीत एंड सृजेश रिसीव द रिकग्निशन ड्यूरिंग द 49th FIH स्टैट्यूटरी कांग्रेस इन ओमान यस्टरडे.
और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस. तो आज हम सबसे पहले जिन्हें याद कर रहे हैं वो हैं मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर, जिनकी आज पुण्यतिथि है. मास्टर गुलाम हैदर वो संगीतकार हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के संगीत को नूरजहां, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर जैसी सुरीली आवाजों का तोहफा दिया। आपको पता है रेशमा, लता मंगेशकर की आवाज को शुरुआत में एक फिल्म निर्माता थे शशधर मुखर्जी, उन्होंने बहुत पतली बता के रिजेक्ट कर दिया था, और तब गुलाम हैदर साहब जिन्होंने लता जी का नाम रिकमेंड किया था, उन्होंने नाराज होकर ये कहते हुए प्रोडक्शन कंपनी छोड़ दी कि मेरे शब्द लिख ले मुखर्जी साहब, एक दिन आएगा कि प्रोड्यूसर लता के दरवाजे पर लाइन लगाए खड़े होंगे।
वाओ, ही वाज सो राइट।
बिल्कुल, और ये भविष्यवाणी उनकी सही साबित हुई, और इसके बाद उन्होंने लता जी को फिल्म मजबूर में गाने का मौका दिया। आइए सुनते हैं फिल्म मजबूर का वो गीत।
दिल मेरा थोड़ा ओ मुझे कहीं काम थोड़ा तेरे प्यार में, हाय तेरे प्यार में, हाय तेरे प्यार में।
संगीतकार बनने से पहले डॉक्टर हैदर थे वो, और डेंटिस्ट हुआ करते थे वो। उन्होंने स्वर की सीढ़ी, गुल बकावली, खजांची, मजबूर, शहीद, चल चल रे नौजवान जैसी कई फिल्मों को अपने संगीत से सजाया। और एक और दिलचस्प बात जो है रेशमा, की जो हम फिल्मी संगीत सुनते हैं ना, जिसमें गीत की शुरुआत एक म्यूजिकल इंट्रोडक्शन से होती है, फिर गीत का मुखड़ा गाया जाता है, फिर एक इंटरव्यू पीस जिसे आजकल इंटरल्यूड कहा जाता है वो आते हैं, तो ये जो चलन था, ये जो स्ट्रक्चर ढांचा था गीतों का, ये मास्टर गुलाम हैदर और उनके बाद उनके कुछ साथियों ने शुरू किया था, और आज भी फिल्मी गीत उसी ढांचे पे बनाए जाते हैं। जी, तो आइए सुनते हैं उनकी फिल्म शहीद का ये गीत।
वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन।
And Mudita, 9th November is also the death anniversary of Dondo Keshav Karve, Jee. Popularly known as Maharshi Karve. He was a social reformer in India in the field of women's welfare. He advocated widow remarriage and he himself married a widow. Karve was a pioneer in promoting widows' education. He founded the first women's university in India, the SNDT Women's University, in 1916.
Jee, bilkul. और आज हिंदी कविता को नए तेवर देने वाले कवि सुदामा पांडे धूमिल की जयंती है, जिनका मानना था कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। उन्होंने अपने दौर की कविता को भीड़ से निकालकर जनतांत्रिक बनाया, उसका रुख ही बदल दिया। गांव की मिट्टी से उनका जुड़ाव भी उनके कथ्य और भाषा दोनों में दिखाई देता है। उन्होंने अपनी पहली रचना जो थी रेशमा, वो सातवीं कक्षा में लिखी थी। और 1971 में उनका पहला कविता संग्रह संसद से सड़क तक प्रकाशित हुआ, और इसी में उनकी सबसे ज्यादा चर्चित और असरदार रचना मोचीराम भी शामिल थी। उनकी दो और काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये दोनों उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए। धूमिल के लिए खास बात यह थी कि साहित्य का सृजन उनके लिए मनोरंजन की चीज नहीं थी। कविता के बारे में उन्होंने लिखा है कि कविता क्या है, कोई पहनावा है, कुर्ता पैजामा है? ना भाई ना, कविता शब्दों के अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। 10 फरवरी 1975 को केवल 39 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से उनकी मौत हो गई। और धूमिल का रहन सहन इतना साधारण था रेशमा, कि उनके परिजनों तक ने रेडियो पर उनके निधन की खबर सुनने के बाद ही जाना कि वो कितने बड़े कवि थे। 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया।
Okay, now that we're talking about him, let's talk about another magician of words, Sir Muhammad Iqbal.
Ji.
9th November is his birth anniversary as well. He was a South Asian Muslim writer, philosopher and politician whose poetry in the Urdu language is considered among the greatest in the 20th century. And today is also the birthday of Sukhbir Singh, an Indian singer. He's often referred to as the Prince of Bhangra. His Bhangra music varied from fusion to pure Punjabi at times. His first album, New Styli, was recorded in Dubai and had many foreign influences. But this album was followed by another, Gal Ban Gayi. And Sukhbir's Bhangra in a fusion of Bhangra with rap, techno and reggae. The juxtaposition of these musical styles is enhanced by Sukhbir's use of original Bhangra instruments like the dhol and dholak.
और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है तो अनुमति दीजिए मुदिता और रेशमा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। नमस्कार।